हालेलुया। सारा जलाल बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले और उसके अजीम और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की इसी सुबह में हम खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है उसमें से सीखेंगे। इससे पहले के हम इफ़सियों 2 बाप उसकी 15वीं आयत को देखें, चंद एक बातें जो हमारी तैयारी के लिए हैं। मुझे याद है कि जब मैं मसीह से बगैर जिंदगी गुजार रहा था तो मार्केट में यानी के मंडी में जब काम करता था तो वहां पर बहुत शदीद दर्द के बायस उस धुंध में उस सर्दी की सुबह में जब वहां पर कोई भी हाथ बढ़ाने वाला मदद करने वाला कोई भी उस दर्द से जो दर्द ऐसी थी कि सांस लेने में मुश्किल थी उस दर्द में कोई भी ऐसा हम सफर या हम साथी या ऐसा कोई दोस्त उस वक्त ना मिला जो उस दर्द से छुटकारा दे सके। हालांकि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं अपने दादा के पास गया तो मैंने कहा कि ये दर्द मेरे सीने में है और मैं से महसूस कर रहा हूं कि मौत के करीब हूं। उसने अपना जो भी मंत्र जो भी वो मेरा दादाजी करते जैसे आप सब जानते हैं उन्होंने किया लेकिन कुछ असर ना हुआ। और जब मैंने देखा कि सांस जो के बहुत ही मुश्किल आ रही है तो मैंने उस वक्त जैसे कि बहुत से लोग मसीही खानदानों में मसीही कलीसियाओं में पैदा हुए हैं लेकिन मसीह के साथ सच्ची रफाकत और उसे शख्सी तौर पर कुछ भी कोई उसके साथ तअल्लुक या उससे कुछ भी वाकफियत नहीं थी। मेरी भी जिंदगी ऐसी ही उस वक्त थी और मैंने ये कहना शुरू किया कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जीता रहूं ताकि अपने घराने के लिए बरकत का बायस बनूं क्योंकि मैं अपने खानदान में बड़ा बेटा हूं। अगर मैं मर गया तो कौन मेरे घराने की रहनुमाई करेगा, कौन उनके लिए रोटी का या बाकी चीजों का इंतजाम करेगा। उस वक्त ये बातें सोचते हुए मैंने कम इल्मी की हालत में खुदावंद को पुकारना शुरू किया और उस वक्त ये बात मैंने अपने दिल में और रोते हुए आंसुओं में कही कि अगर तू मुझे जिंदगी दे तो मैं अपनी जिंदगी तुझे दूंगा। उस वक्त उस धुंध में उस सर्दी में कोई भी इंसान मदद का बायस नहीं बना लेकिन एक शख्सियत है जो आप आज जितने भी मुश्किलात में हैं, आज कैसे भी हालात हैं, कैसा भी लोग आपको जानते हैं, उन सब पर से अपना भरोसा उठाकर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ अपनी नजरें लगाएं। वो आपके हर तरह के दुख तकलीफ में आपका हमसफर, आपका साथी, आपका इत्मीनान, आपकी तसल्ली और आपकी शिफा बनेगा। और ये मेरा शख्सी तलक के बुनियाद पर बड़ा ही यकीन है वो आपके लिए कर सकता है। और बाइबल मुकद्दस उस शख्सियत को जिसे खुदावंद यीशु मसीह कहा गया है, बाइबल मुकद्दस उसे खुदा का वो जिंदा कलाम कहती है, खुदा का वो कलाम कहती है जो बेतासीर नहीं लौटता। और आज हम उस कलाम के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं जैसे जबूर नवीस में लिखा है, जबूर 119 उसकी 103 आयत में लिखा है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। और ये सच है, उसके कलाम की बातें, जो उसका कलाम, जो लागोस कलाम है, जो लिखा हुआ कलाम है, हमारी रूहों की ताजगी का बायस है, हमारी रूहों की वो ताकत है, हमारी रूहानी जिंदगी की वो बुनियाद है। इसलिए हमें हर रोज अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में उस कलाम को जगह देने की जरूरत है, जिसके बारे में अय्यूब नबी बड़े ही फख्र के साथ ये बात कहता है। जबूर अय्यूब उसका 23वां बाप उसकी 12वीं आयत के दूसरे हिस्से में वो कहता है, मैंने उसके मुंह की बातों को, यानी के खुदावंद के मुंह की बातों को, उसके उस जिंदा कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। आज बहुत से लोग हैं, उन्होंने अपने लिए बहुत सी चीजें जमा की हैं, ताकि इन मुश्किल हालात में, जो हालात आप देख रहे हैं कि इस जंग और इस लड़ाई के बायस किस तरह लोग दूसरे इलाकों में आ रहे हैं, और वो उस रोटी के लिए, उस खुराक के लिए जो आर्जी तौर पर उनको जिंदगी दे सकती है, किस तरह उसके लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज जो रोटी, लेकिन आज जो मन हम खाने के लिए जा रहे हैं, ये वो मन है जो आसमान से उतरा, जिसने जिस्मानी सूरत इख्तियार की, और ये मन हमारी जिंदगी में, ये कलाम, ये रोटी, ये जिंदगी की रोटी हमारी सब चीजों से ज्यादा, हमारी सब चीजों से ज्यादा अफजल जाननी चाहिए हमारी जिंदगी में, क्योंकि उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। और ये वो कलाम है, ये वो कलाम है जो जिंदा कलाम है, और ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह है। आए मेरे साथ चंद लम्हों के लिए खुदावंद की हजूरी में झुकें और देखें कि हमने अपनी जिंदगियों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में किन चीजों को जखीरा किया है, इन दुनिया की चीजों को जो आरजी हैं, इन दुनिया की चीजों को जो हमें तसल्ली, इत्मीनान, शफा, खुदा की सच्चाई और रूह की ताजगी नहीं दे सकती। आए इस जिंदगी की रोटी में से मेरे साथ खाएं और सेर हों, चंद लम्हों के लिए अपने खुदावंद के हजूर झुक जाएंगे। खुदा बाप, तेरा कलाम जो जिंदा और पाक है और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो गूदे गूदे और बंद बंद को जुदा करके गुजर जाता है और दिलों के ख्यालों को बाखूब जानता है, हम अपने आप को तेरे सामने खाली कर देते हैं आज की सुबह में। हम सबको ये हिकमत और दनाई दे के इस दुनिया की चीजों को पीछे करते हुए, इस दुनिया की चीजों को जो आरजी हैं, ख्वाब वो मकान है, रुपया पैसा है, कोई भी चीज है, उसे, उन तमाम चीजों को रद्द करते हुए तेरे बेटे को, तेरे बेटे को जो जिंदा कलाम है, अपनी जिंदगी में अहमियत दें। यीशु मसीह के नाम में हमारे दिलों की आंखों को रोशन कर, और आज का जो पैगाम है वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मेरे साथ निकालें नेहरनामा, इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 2वां बाप उसकी 15वीं आयत को देखेंगे। आज हम जो इंसान हैं, बेशुमार गलतियां, खताएं, और हर इंसान जो इस जमीन पर सांस लेता है वो गुनाह में सांस लेता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन एक शख्सियत, एक अजीम हस्ती इस दुनिया में आई, और उस हस्ती का नाम है खुदावंद यीशु मसीह, जिसमें कोई गुनाह नहीं पाया गया, और जो मुकम्मल खुदा और खुदा का बेटा है, उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान रखेगा वो हरगिज हलाक ना होगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे साथ देखें, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। इफ़सियों 2 उसकी 15 आयत को, जैसे कि हम सीख रहे हैं सिट, यानी कि मसीह यसु में हमारी मुकामी हालत इस जमीन पर क्या है। हम उस बादशाहों के बादशाह और खुदामदों के खुदा और उस जिंदगी के मालक के क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं, उस जिंदगी के मालक के जिससे जिंदगी जाहिर होती है, जिससे जिंदगी शुरू होती है, उस जिंदगी के वारिस हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाने के बायस है। और रोमियो 10 उसकी 9 आयत के मुताबिक लिखा है कि ईमान लाना जबान, ईमान लाना दिल से है और उसका इकरार जुबान से किया जाना जरूर है कि खुदावंद यसु मसीह मेरा निजात दहिंदा है जो मुर्दों में से जी उठा। मेरे साथ देखें 15 आयत को, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। यहां पर इस सच्चाई को जो पालूस उसूल बयान करता है, वो कहता है कि वो बादशाहों का बादशाह जो जिस जिस्म में जाहिर हुआ है, उसका जाहिर होने का मकसद ये है कि जो दुश्मनी पुराने आदम के बायस, पहले आदम के बायस, नए आदम के तलक में है, वो दुश्मनी किस तरह दूर हो सकती है। और वो दुश्मनी नए आदम ने दूर की जो अपने जिस्म के जरिया से, यानी कि खुदावंद यसु मसीह जो जिस्म में जाहिर हुआ, जिसने जिस्म में अपनी सूरत पकड़ी और वो खुदा का बेटा कुवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने ये अजीम काम बनी नू इंसान की उस दुश्मनी को दूर करने के लिए किया। और ये किस तरह हुआ? सलीब पर अपनी जान देने के बायस उसने वो सारी कबाहतें जो हम पर थी, वो सारी लानत, वो सारे अहकाम, वो सारे हुक्म, वो सारी रस्में, वो सारे फरमान जो हम पर थे पूरा करना, वो सब उसने पूरा किए, ताकि हम उसकी रास्तबाजी बन जाएं, ताकि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे लिए गुनाह बन गया, ताकि हम उसकी रास्तबाजी बन जाएं। और बाइबल मुकद्दस इस भेद को बड़े गहरे तौर पर बयान करती है, अपने जिस्म के जरिया से। और बाइबल मुकद्दस में जब हम इब्रानियों के खत को देखते हैं, तो वहां पर 10 उसकी 5 आयत में लिखा है, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यहां पर अब्रानियों का मुसन्नफ खुदावंद खुदा के उस सच्चाई को बयान करता है कि वो इन बातों से खुश ना हुआ, उसकी जो ख्वाहिश दुनिया के बैल बकरे और किसी तरह का खून पूरा ना कर सका, तो उसने क्या किया दुनिया में आते वक्त, क्या किया, मेरे लिए उसने एक बदन तैयार किया। यहां पर खुदावंद यसु मसीह के बारे में बात हो रही है कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया, यानी कि इंसानी बदन में उसने कदम रखा, ताकि हम उस तक रसाई कर सके, ताकि वो दुश्मनी दूर हो जाए। और उसने उन तमाम दुखों का सामना किया जो बनीनू इंसान को करने का जा हक था, जो लानत, जो शर्मिंदगी हम पर आनी थी वो सारी उसने अपने ऊपर उठा ली। और कुलसियों उसका 2 उसकी 13 और 15 आय से पालूस सूल इस सच्चाई को बड़े वाजिया तौर पर कहता है कि उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, यानी कि जिन्होंने उस पर ईमान रखा है उसने उनके कसूरों को माफ करके उन्हें वो नई जिंदगी में शामिल किया है। वो नई जिंदगी क्या है? जब हम रोमियों उसका छठा बाप उसकी 23वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है लेकिन खुदा की बख्शिश, अब हमारे खुदा की बख्शिश मसीह यीशु में क्या है? हमेशा की जिंदगी है। ये वो जिंदगी उसने हर एक ईमानदार में रखी। और क्या लिखा है? हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये वो खुदा की मोहब्बत है जो उसके जिस्म में जाहिर होने से नजर आती है। आज अगर आप किसी तरह की मुश्किलात का, खासकर बाइबल मुकद्दस की तालीम जो बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिशों से बदल दी है, अगर आप ऐसी तालीम का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए ये सादा सी बात है कि वो निजात जो आपको हासिल है, हर एक ईमानदार को, इस दुनिया के हर एक बशर को हासिल है, वो निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस है। और उसने सब कसूरों और गुनाहों को माफ कर दिया। और ये किस लिए हुआ? उसका बदन जो सलीब पर गुनाह की कुर्बानी के लिए दे दिया गया, उसका लहू जो पाक और पवित्र लहू किसी बैल बछड़े और सोने चांदी के खून से खुदा खुश ना हुआ, तो उसने अपने बेटे के लहू को देखा और उसका लहू हमारे गुनाहों के कफारा के लिए बहाया गया। और यीशु मसीह वो मुकद्दस और कामिल काहिन है। काहिन को जब हम देखते हैं तो काहिन जब पाक त्रीन मकाम में जाते थे तो वो भेड़ बकरे और बाकी जानवरों का खून और उनका नजराना खुदा के सामने पेश करते थे, चढ़ाते थे, लेकिन अपने आप को कुर्बान नहीं करते थे। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है रोमियो के खत में, जब हम देखते हैं रोमियो आठ बाप तो उसमें लिखा है, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया, इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। काहिन सिर्फ और सिर्फ बैल बकरे और बछड़े की कुर्बानी लेकर खुदा की हजूरी में जाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा इकलौता काहिन है जिसने अपने आप को उस कुर्बानी के तौर पर दे दिया ताकि बनी नू इंसान के गुनाहों का कफारा एक साल, दो माह या तीन साल के लिए नहीं बल्कि अबदी कफारा उसने दिया है, ताकि हम अबदी जिंदगी हासिल करें। अब हमें खुदावंद यीशु मसीह के उस अबदी कफारा के बायस, रूह की शरीयत के बायस मसीह यीशु में मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है, और ये वो हमेशा की जिंदगी है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह में हासिल है। और उसने क्या किया? उसने वो तमाम हुक्म, वो तमाम चीजों को क्या किया? कुलसियों दो बाप उसकी 15वीं आयत में लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेयाबी का شادیانہ بجایا، یہ وہ فتح ابی کا شادیانہ ہے، یعنی کہ فتح یعنی کہ وہ فتح ہر ایک ایماندار کو حاصل ہے، اور صرف اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو اپنے جسم کے ذریعہ سے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس زندہ کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس زندہ کلام کو. بائبل مقدس کہتی ہے کہ کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. آج ہماری کلیسیا کا حال ہے، ادھر خداوند یسوع مسیح کا نام، ادھر دیوی دیوتاؤں کے چڑھاوے، ادھر خداوند یسوع مسیح کا نام، ادھر بہت سے اور راستے چنے ہوئے ہیں. ایسی محبت اور ایسی عبادت خداوند، جو آپ جو بت پرستی کی عبادت ہے، ایسی عبادت کو خداوند خدا جو زندگی دینے والا خدا ہے اپنے حضور قبول نہیں کرتا. ہمیں آج اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یشوع کی طرح صحیح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو زندہ خدا کی ہی پرستش کریں گے. پرستش سے مراد وہاں پر یہ ہی نہیں کہ ہم صرف اس کے لیے گیت ہی گائیں گے، صرف اس کے لیے زبور گا لیا صبح کو اٹھ کر اور بات ختم. ہم تو اسی کی پرستش کریں گے، یعنی کہ اسی کے حضور اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ پرستش کا لفظ جب یونانی عبرانی میں دیکھتے ہیں تو قربانی چڑھانا، ایسی قربانی چڑھانا جو خداوند خدا کو پسندیدہ ہو. اگر نہیں تو یہ بات آپ عبرانیوں 13 اس کی 15 آیت میں دیکھ سکتے ہیں. پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانیاں، یعنی ان ہوٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خداوند کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، ہر وقت چڑھایا کریں. یہ وہ قربانی ہے جو گواہی کی قربانی ہے، کہ ہر وقت یہ چڑھاوا اس کے حضور چڑھانے کی ضرورت ہے، ہر وقت اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو خدا کی صورت پر تھا، وہ جو مکمل خدا تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا میرے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے. مت کہیں کہ اگر آپ وہ ساری دنیا کے گناہوں کے لیے، بے شک صلیب پر اس نے جان دی ہے ان کے تمام گناہوں کے لیے، اگر میں اکیلا بھی اس دنیا میں گناہگار ہوتا تب بھی وہ صلیب کا دکھ سہنے کے لیے، اس شرمندگی کو، اس تکلیف کو منہ پر تھکوانے کو، اور آدمیوں میں مردود اور مرد غمناک بننے کو آ جاتا، کیونکہ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون سی قباحتیں، کتنی بت پرستی اپنی زندگی میں بھری ہوئی ہے. تصویروں کی بت پرستی، لکڑ اور پتھر کے جو بت ہیں ان کی بت پرستی، ان ساری بت پرستیوں کو چھوڑ کر اس زندہ خدا کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آسمان اور زمین پر اور کوئی نام نہیں بخشا گیا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا واحد نام بخشا گیا ہے جس کی ہمیں پرستش کرنی ہے. روحانی غزلوں کے وسیلہ سے، گیتوں اور زبوروں کے وسیلہ سے، اور خاص کر اپنی زندگی سے، کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش، یعنی کہ ہم تو خداوند ہی کی پیروی کریں گے، ہم تو خداوند ہی کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم تو خداوند ہی کا نام لیں گے. کیا ایسی پرستش آپ کی زندگی میں ہے؟ بہت دفعہ جب ستائے جاتے ہیں، او ایمانداروں کے مجمع میں شامل، ہفتہ دو ہفتہ کلام سنا، عبادت کی، پرستش کی، جب اپنا مطلب ختم، تو یسوع مسیح کون اور اس کا کلام کیا؟ ہمیں نہیں ضرورت، ہمارا مطلب پورا ہو چکا ہے. آج بہت سے مسیحیوں کی جو जिंदगी है जो नामी मसीही है और उसके लिए बाइबल मुकद्दस कहती है जो लोग खुदावंद की रोशनी से खुदावंद के कलाम से खाली हैं, इस जहां के खुदा अबलीस उस पुराने शैतान ने उनको गुमराह कर दिया है, उन्होंने अपने अपने खुदा बना लिए हैं। और वो खुदा रोमियो पहला बाप उसकी 27वीं आयत में हम देख सकते हैं कि किस तरह खुदावंद का बंदा पालूस रसूल 21वीं आयत से इस बात को बयान करता है, कहता है इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी ताजीम और उसकी शुक्रगुजारी ना की। बहुत से लोग खुदा को जानते हैं, बहुत से लोग मसीह को जानते हैं, लेकिन उसकी ताजीम उसकी मर्जी के मुताबिक वो बरकत भरी जिंदगी नहीं गुजारते। दो कश्तियां, दो मालकों की खिदमत करने वाला कभी भी दो मालकों को खुश नहीं कर सकता, या तो फिर वो एक को राजी करेगा या फिर दूसरे की मुखालफत में खड़ा होगा। आज अपनी जिंदगी में जांचने की जरूरत है कि हम उस खुदा को जिसको जानते हैं, जिसने पैदा किया, जिससे जिंदगी की सांसें जारी हुई, क्या उसकी खुदाई के लायक उसकी ताजीम और शुक्रगुजारी कर रहे हैं और क्या बातल ख्यालों में पड़ गए हैं और क्या हमारे दिल बेसमझ हो गए हैं, क्या हमारे दिलों पर अंधेरा छा गया है, क्या वो तारीकी जो इस जहां का खुदा दूसरा करंथियों 4:4 के मुताबिक अबलीस को कहा गया है उसकी गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं, और क्या हमने गैर फानी खुदा के जलाल को फानी और इंसानी और परिंदों और चिपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल दिया है। ये वो लोग हैं जो दोहरी जिंदगी गुजारते हैं, एक तरफ खुदा को जलाल और दूसरी तरफ अपने लकड़ पत्थर और परिंदे और चुरिंदे और कीड़े मकोड़ों की सूरत में जो बदले हुए खुदा हैं उनकी प्रस्तुति करते हैं। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी अजमत खुदा हरगिज कबूल नहीं करता। वो अपने कलाम में कहता है कि मेरा कलाम जिंदा है और मेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। इसीलिए पालूस रसूल इस खत में दूसरे बाब की 15वीं आयत में कहता है कि उन सारी रस्मों और उन सारे रिवाजों से निकलने की जरूरत है, वो सारा फिरके को छोड़ने की जरूरत है जो मसीही होते हुए हमारी जिंदगी में पाया जाता है, कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसे कम इलम है, इसे बहुत ज्यादा इलम है, इसका सोचना ये है, इसकी सोच ऐसी है। वो सारी जुदाई की दीवार उसने अपने जिस्म के जरिया से, अपने उस जिस्म के जरिया से जो सलीब पर तोड़ा गया, जो सलीब पर उसने दे दिया, उसके बायस हमें उसमें क्या है, वो जिंदगी की रफाकत हासिल है, वो जिंदगी की रफाकत हासिल है। और ये जिंदगी का वो कलाम है जो इत्तदाही से है, इससे पहले कि आसमान और जमीन पैदा हो। पहला यूहन्ना उसका पहला बाप की पहला यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप उसकी पहली आयत में लिखा है इत्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। ये वही लागोस कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह है। और 14वीं आयत में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसकी मामूरी में से क्या पाया, फजल पर फजल, यानी कि उसकी बरकत, उसकी बख्शिश। और बनीनू इंसान खुदा से क्या चाहता है कि वो उनके लिए करे। आज अपनी उस गुमराही में से आज वो अपने बनाए हुए बैरियर, अपनी बनाई हुई हदबंदी, उसे तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि उसने अपने आप को खाली करके सलीब का दुख सहा, अपने आप को वो जो खुदा की सूरत पर था इंसानी सूरत में दाखिल होके, इंसानी सूरत में जाहिर होके इंसानों के ताबिया हो गया, ताकि उनको वो जिंदगी का तोहफा दे सके जो वो अपने पूरे जोर, काम, नेकी, रासबाजी और किसी भी ऐसी अच्छी नेक नीति से नहीं हासिल कर सकते थे। इसीलिए उसने अपने जिस्म के जरिया से वो दुश्मनी जो खुदा और बनीनू इंसान के दरमियान थी, ये दुश्मनी ये नहीं कि खुदा नफरत करता है, ये दुश्मनी तारीकी और रोशनी के दरमियान थी। खुदा नूर है, पाक है और बनीनू इंसान जो तारीक है, नूर और तारीकी का मेल हरगिज नहीं हो सकता। इसीलिए उसने अपने आप को खाली किया और जमीन पर आया और अपनी जिंदगी का हदिया उसकी हजूरी में, अपनी जिंदगी को उसकी हजूरी में दे दिया, ताकि हम उस दुश्मनी को, जो दुश्मनी में मौत थी, मौत को जिंदगी में उसने बदल दिया। और ये वो कलाम है, मुकाशवा की किताब 19वां बाप उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। ये वो कलामे खुदा है जो खुदावंद यसु अल मसीह है। ये वो कलाम है जिसका वादा किया गया, रोमियो पहला बाप उसकी 2वीं आयत से 5वीं आयत तक, 5वीं आयत तक ये वो वादा है जो खुदा बाप ने बनीनू इंसान की जिंदगी में पूरा किया। और लिखा है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताबे मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यसु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के तबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीजगी की रूह के तबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमें फजल और असालत मिली, ताकि उसके नाम की खातर सब कौम में से लोग ईमान के ताबिया हों। हमें ईमान ही से ये बरकत और ये जिंदगी का तोहफा मिला है, और ये वो जिंदगी का तोहफा जो जिस्म में जाहिर हुआ, खुदावंद का जिंदा कलाम है, जिसे मुकाशवा 19वां बाप उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आज अपनी जिंदगियों में देखें कि हम अपनी जिंदगी में उसके कलाम को कितनी अहमियत देते हैं। आए हम खुदावन के हजूर झुकें। इस सवाल पर इस मैसेज को खत्म करूंगा कि आज हम अपनी जिंदगी में कितनी खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं। कादर मुतले खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। आज का कलाम सबके लिए बरकत का बायस हो, और जो तेरा कलाम है जो दिलों गुर्दों को खुदावंद खुदा जांचता है, यानी के वो सारी तरीकी को दूर करने की कुदरत और ताकत रखता है, छू, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमेन।